मैं हूं अभिज्ञात सिंह, बीए सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम या यू कहें तुर्क आक्रमण, जिसमें प्रमुख रूप से गजनवी और गोरी शामिल हैं और उनका विवरण। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, ये जान लेना परम आवश्यक है। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे मुस्लिम आक्रमण के समय राजनीतिक दशा। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी थी। इस समय देश की स्थिति वैसी ही थी जैसे किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के बाद हो जाती है। स्वदेशी शक्तियों के साथ ही मुल्तान तथा सिंध के भागों में दो विदेशी राज्य भी स्थापित हो चुके थे। संपूर्ण देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जो एक दूसरे के मूल्य पर अपनी शक्ति एवं साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। निम्नलिखित पंक्तियों में 10वीं शताब्दी के प्रमुख भारतीय राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। ये राज्य मुख्य रूप से मुल्तान तथा सिंध, काबुल तथा पंजाब के शाही राज्य, काश्मीर का राज्य, कन्नौज का प्रतिहार राज्य, मालवा का परमार राजवंश, बुंदेलखंड का चंदेल वंश, त्रिपुरी का कलचूरी चेदी वंश, संभकारी का चौहान वंश, गुजरात का चालुक्य राजवंश और बंगाल का पाल राज्य प्रमुख रूप से थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुल्तान तथा सिंध की। इन दोनों ही प्रदेशों में अरबों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 8वीं शती के प्रारंभ में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में लगभग 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप ये दोनों राज्य अरब सत्ता के अधीन आए। 9वीं शताब्दी के अंत में मुल्तान शासक फतेह दाऊद था। सिंध में अब भी अरब लोग शासन कर रहे थे। ये लोग स्थानीय जनता को इस्लाम मत में परिवर्तित करने का कार्य निरंतर करते जा रहे थे। दूसरा प्रमुख राज्य था काबुल तथा पंजाब का शाही राज्य। उत्तरी पश्चिमी भाग में यह भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था, जो चिनाब से लेकर हिंदकूश तक फैला हुआ था। शाही वंश ने 2 सदियों तक सफलतापूर्वक अरबों का विद्रोह किया। शाही वंश का अंतिम शासक लघु तुर्मान हुआ, जिसके समय में उसके ब्राह्मण सचिव कलर ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहां जयपाल शासन कर रहा था। वह एक वीर योद्धा तथा कुशल शासक था। उसकी राजधानी उदय भांडपुर, जो कि सिंध के दक्षिण किनारे पर स्थित है, में थी। यह राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। एक अन्य राज्य था काश्मीर का राज्य। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में काश्मीर में उत्पल राजवंश का शासन था। इस राजवंश के शक्तिशाली नरेश शंकर वर्मा ने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक विस्तृत किया। उसके मृत्यु के बाद काश्मीर घाटी में घोर अव्यवस्था फैल गई, जिसका लाभ उठाकर 939 ईस्वी में यशस्कर ने ब्राह्मणों की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की। उसका शासनकाल शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पर्वगुप्त तथा फिर क्षेमगुप्त राजा हुआ। अंतिम शासक के काल में लगभग 980 ईस्वी में उसकी पत्नी दिद्दा वास्तविक शासिका थी। अंतोगत्वा उसने राजगद्दी हथिया ली तथा 1003 ईस्वी तक शासन किया। दिद्दा की मृत्यु के बाद उसके भतीजे संग्राम राज ने काश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमण के समय काश्मीर का राज्य अव्यवस्था एवं अराजकता के दौर में गुजर रहा था। कन्नौज का प्रतिहार राज्य। 9वीं शताब्दी में कन्नौज में प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के शक्तिशाली राजा वत्सराज तथा उसका पुत्र नागभट द्वितीय थे। इस वंश का दक्षिण के राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल राजवंशों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। कालांतर में प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो गई। इस वंश के अंतिम शासक राज्यपाल के समय में लगभग 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया था। मालवा तथा परमार राजवंश। दसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में शियक नामक व्यक्ति ने मालवा में स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना की थी। पहले इस वंश के शासक राष्ट्रकूटों के अधीनता स्वीकार करते थे। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा मुंज, जो कि 973 से लेकर 995 ईस्वी तक शासन किया हुआ, वो महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। उसके बाद सिंधुराज तथा फिर भोज शासक हुए। भोज ने 1060 ईस्वी तक शासन किया। वह महमूद गजनवी के समकालीन था। अगला राज्य बुंदेलखंड का चंदेल वंश। बुंदेलखंड में स्वतंत्र चंदेल राजवंश की स्थापना करने वाला शासक हर्ष हुआ। जो कि 900 से 925 तक शासन किया। उसके पूर्वज गुर्जर प्रतिहार की अधीनता स्वीकार करते थे। 10वीं शताब्दी में बुंदेलखंड एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। धंग, गंड तथा विद्याधर चंदेल वंश के प्रमुख शासक थे। विद्याधर जो कि 1019 से 1029 तक शासन किया के समय में महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया था। विद्याधर ने बड़ी वीरता तथा कुशलता के साथ उसका सामना किया तथा महमूद को विवश होकर उसे संधि करनी पड़ी थी। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विद्रोह किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। त्रिपुरी का कलचूरी चेदीवंश। चंदेल राज्य के दक्षिण में यह राज्य स्थित था जिसकी राजधानी त्रिपुरी जो कि अब जबलपुर मध्य प्रदेश में है स्थित थी। इस वंश की स्थापना कोक्कल नामक एक महान सेना नायक ने की थी। उसने प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। कोक्कल ने दक्षिण पूर्व की ओर अरबों के प्रसार को भी रोके रखा। उसके उत्तराधिकारियों ने 13वीं शती के अंत तक महाकौशल क्षेत्र में शासन किया। मुस्लिम आक्रमण के समय यह मध्य भारत का शक्तिशाली राज्य था। साकंभरी का चौहान वंश। चौहान वंश अजमेर के उत्तर में स्थित था जिसकी राजधानी सांभर थी। 10वीं सदी के मध्य इस वंश के सिंह राज ने प्रतिहारों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसके उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्यों की विजय की तथा अपने राज्य का विस्तार नर्मदा तक किया। 10वीं सदी के अंत में यह एक शक्तिशाली राज्य था। अगला है गुजरात का चालुक्य राजवंश। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था जो कि 974 से 995 ईस्वी तक शासन किया। उसने गुजरात तथा सौराष्ट्र की विजय की। उसका उत्तराधिकारी चामुंडराज जो कि 995 से 1022 ईस्वी तक शासन किया था, जिसने धारा के परमार नरेश सिंधुराज को पराजित किया। वह महमूद का समकालीन था। चालुक्य राजाओं के समय में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। अगला राज्य है बंगाल का पाल राज्य। 8वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। इस वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल तथा देवपाल हुए। उनका प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। 11वीं सदी के प्रथम चरण में बंगाल का पाल वंशी शासक महीपाल प्रथम था। उसी समय महमूद पश्चिमी भारत के राज्यों को जीतने में संलग्न था। उपयुक्त प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। विंध्य पर्वत के दक्षिण का भाग भी अनेक राज्यों में विभाजित था, जिनमें कल्याणी के चालुक्य तथा तंजौर के चोल शक्तिशाली थे। जिस समय चोल तथा चालुक्य दक्षिण में परस्पर संघर्षरत थे, उसी समय उत्तरी भारत के राज महमूद गजनवी के आक्रमणों का शिकार हो रहे थे। विभाजन तथा पारस्परिक संघर्ष की इस स्थिति ने तुर्क आक्रमणकारियों का कार्य सुगम कर दिया और इस तरह मोहम्मद गजनवी अपने लक्ष्य में लगभग सफल रहा। हमने अभी तत्कालीन भारतीय राज्यों की राजनीतिक दशा पर नजर डाला जो कि एक प्रमुख कारण थी मोहम्मद गजनवी के सफल होने की। अब हम ध्यान देंगे प्रारंभिक आक्रमणों के बारे में। भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी आए वे गजनी के शासक कुल से संबंधित थे। 962 ईस्वी में अलप्तगी नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। उसके दामाद सुगुप्तगी ने उसके वंश का अंत कर 977 ईस्वी में राजगद्दी हथिया ली। वह एक शक्तिशाली शासक था जो भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं तैयार करने लगा। पंजाब के हिंदू शासक जयपाल ने उसकी योजनाओं को प्रारंभ में ही विफल कर देने के उद्देश्य से 986-87 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ गजनवी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा तथा किसी भी पक्ष की विजय न हो सकी, परंतु दुर्भाग्यवश भारी वर्षा तथा हिमपात से भारतीय सैनिकों का उत्साह भंग हो गया, जिसके फलस्वरूप जयपाल को अत्यंत अपमानजनक संधि करनी पड़ी। हरजाने के रूप में जयपाल को सुबुक्तगीन को 50 हाथी तथा कुछ प्रदेश देने का वचन दिया, परंतु लाहौर पहुंचकर उसने संधि की अपमान पूर्वक शर्तें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुबुक्तगीन ने उसे राज्य पर आक्रमण कर लूटपाट की। जयपाल ने 991 ईस्वी में कुछ मित्र राजाओं की सहायता से गजनवी पर पुनः आक्रमण किया, किंतु युद्ध में सुबुक्तगीन की ही विजय हुई। इस विजय के फलस्वरूप सुबुक्तगीन ने पेशावर तक के भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई और इस तरह से यह अध्याय खत्म हुआ। परंतु अगला परिदृश्य में उभर के जो सामने नाम आता है वह महमूद गजनवी का। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना। राज्यारोहण के समय उसकी अवस्था 27 वर्ष की थी। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक था, जो कि हम आगे चल के देख चुके हैं। कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा से यमन उदौला तथा अमीनुल मिल्ला का सम्मानित विरुद्ध प्राप्त करते समय उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसे धन की भी आवश्यकता थी, जो भारत में आसानी से प्राप्त हो सकता था। अतः इस्लाम धर्म के प्रचार तथा धन प्राप्त करने की लालसा से उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, दो कारण निकल के आए यहाँ पे। इस्लाम धर्म का प्रचार तथा धन प्राप्त करने की लालसा से उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। हेनरी एलियट ने भारत पर महमूद के आक्रमण की संख्या 17 बताई है। महमूद का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ। 1001 ईस्वी में पेशावर में दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। उसने महमूद को भारी हर्जाने की रकम तथा 50 हाथी देने का वचन दिया। महमूद उसकी राजधानी उदयभानपुर में लूटने के बाद अतुल संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया। जयपाल इस पराभव को सहन नहीं कर सका तथा उसने आत्महत्या कर ली। पश्चिमी पंजाब तथा लाहौर पर महमूद का अधिकार हो गया। जयपाल के बाद आनंदपाल तथा फिर त्रिलोचनपाल साहियान वंश के शासक हुए। आनंदपाल तथा महमूद की सेनाओं के बीच दो बार युद्ध हुए और दोनों ही बार महमूद की ही विजय हुई। सर्वप्रथम 1009 ईस्वी के लगभग महमूद ने आनंदपाल की सेनाओं को वैहंद के मैदान में पराजित किया। आनंदपाल ने भागकर नगरकोट के दुर्ग में शरण ली। महमूद ने दुर्ग की घेराबंदी की तथा 3 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात वहां अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिंध से लेकर नगरकोट तक का समस्त प्रदेश उसके अधिकार में आ गया। उत्तवी के विवरण से पता चलता है कि नगरकोट की लूट में महमूद को इतना धन मिला कि जितने भी ऊंट मिले उन सब पर उससे लाद दिया गया, फिर भी धन शेष रहा। इसे अधिकारियों में बांट दिया गया। उसमें स्वर्ण के सिक्के, सोना चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। आनंदपाल ने नमक की पहाड़ियों के कोने में स्थित नंदन को अपनी राजधानी बनाई। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने महमूद के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया, किंतु 1018 ईस्वी में महमूद ने पुनः इस संघ को परास्त कर दिया। 1021 ईस्वी में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई तथा इसके बाद शाहिया वंश का राज महमूद के कब्जे में चला गया। महमूद के आक्रमण का दूसरा सिलकार मुल्तान का राज्य हुआ। वहां का राजा फतेह दाऊद शिया मतावलंबी था और इस कारण सुन्नी समुदाय उससे चिढ़ता था। 1006 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दाऊद को पराजित किया तथा अपनी ओर से सुखपाल को वहां का राजा बनाया। यह सुखपाल जयपाल की पुत्री का पुत्र था, जो महमूद द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था, जहां उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। परंतु सुखपाल ने इस्लाम धर्म का त्याग कर महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद ने भटिंडा के राजा विजय राय पर 1005 ईस्वी में आक्रमण किया। भटिंडा के एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो पश्चिमोत्तर भारत से गंगा की उपजाऊ घाटी तक पहुंचने के मार्ग में पड़ता था। महमूद ने दुर्ग का घेरा डाला। विजय राय ने बड़ी वीरतापूर्वक दुर्ग की रक्षा की, परंतु असफल रहा तथा भाग खड़ा हुआ। और एक बार पुनः मोहम्मद की जीत हुई, महमूद की जीत हुई और महमूद ने उस पर अधिकार कर लिया तथा नगर के निवासियों की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें इस्लाम धर्म मानने पर विवश कर दिया गया। उसे अक्तूल संपत्ति प्राप्त हुई। 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर स्थित नारायणपुर पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी के मंदिर को तोड़ने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया। थानेश्वर का शासक डरकर भाग गया तथा महमूद ने मनमाने ढंग से नगर की लूटपाट की और चक्रस्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया। तत्पश्चात उसे गंगा यमुना के द्वाब पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला। यहाँ अनेक भव्य मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर थे। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लूट में अतुल संपत्ति प्राप्त की। यहाँ से उसने कन्नौज को प्रस्थान किया। प्रतिहार शासक राज्यपाल भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने बड़ी आसानी से नगर पर अधिकार कर लिया। उसकी सेना ने नगर में भारी लूटपाट एवं कत्लेआम मचा दिया। यहाँ से भी उसे बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। मथुरा तथा कन्नौज से अतुल संपत्ति लेकर वह पुनः गजनी लौट गया। कन्नौज नरेश राज्यपाल के व्यवहार ने हिंदू राजाओं को क्रुद्ध कर दिया तथा उन्होंने चंदेल नरेश विद्याधर की अध्यक्षता में एक संघ बनाया। सर्वप्रथम इस संघ ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी तथा फिर महमूद के विरुद्ध शक्ति जुटाने में लग गया। इस संघ को भंग करने के उद्देश्य से 1019 ईस्वी के अंत में महमूद ने पुनः गजनी से भारत की तरफ प्रस्थान किया। चंदेल नरेश एक बड़ी तथा शक्तिशाली सेना के साथ कलिंजर के पास उसका सामना करने को प्रस्तुत हुआ। महमूद विशाल सेना देखकर घबरा गया तथा हतोत्साहित हो उठा, किंतु विद्याधर रातों रात रहस्यमय ढंग से भाग निकला। महमूद ने इस पर बाद में आश्चर्य भी प्रकट किया। महमूद ने नगर को खूब लूटा तथा भारी रकम लेकर स्वदेश लौट गया। इस प्रकार जिस कायरता के लिए विद्याधर ने पूर्व में प्रतिहार नरेश राज्यपाल को दंडित किया था, उसी का प्रदर्शन स्वयं उसी ने किया, जो कि अत्यंत निंदनीय है। 1022 ईस्वी में चंदेल की शक्ति को पूरी तरह कुचलने के उद्देश्य से महमूद ने पुनः कलिंजर पर आक्रमण किया। उसने दुर्गों का घेरा डाला। दीर्घकालीन घेरे के बाद जब उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने चंदेल नरेश से संधि कर ली। उसने महमूद को 300 हाथी उपहार में दिए, जिन्हें लेकर वो गजनी लौट गया। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिखकर भेजी थी, जिसे सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विद्याधर को 15 किलो का शासन सौंप दिया। महमूद गजनी का सर्वप्रसिद्ध आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर हुआ। यह मंदिर काठियावाड़ा में स्थित तथा समूचे भारत में अपनी पवित्रता, गौरव एवं समृद्धि के लिए विख्यात। कहा जाता है कि यहाँ के हिंदुओं में यह विश्वास था कि महमूद उत्तर भारत के बहुसंख्यक मंदिर व मूर्तियों को तोड़ने में इस कारण सफल रहा कि भगवान सोमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। महमूद को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने इस मंदिर को नष्ट करने तथा मूर्ति को तोड़ने का निश्चय किया। वह मुल्तान से 30,000 अश्वरोहियों तथा अन्य सैनिकों के साथ सोमनाथ के लिए कूच किया। रेगिस्तानी मार्ग में अत्यंत सावधानी बरतते हुए जनवरी 1025 ईस्वी में अलीगढ़ पहुंचा। चालुक्य शासक भीम प्रथम अपने सहायकों के साथ राजधानी छोड़कर भाग गया। नगर को लूटते हुए महमूद ने सोमनाथ के गढ़ का घेरा डाल दिया। यहाँ का स्थानीय सेना नायक ने भाग कर समुद्र में एक नाव पर शरण ली तथा प्रतिरोध मुख्यतः ब्राह्मणों और पुजारियों द्वारा ही किया गया। महमूद बिना किसी कठिनाई के उसमें प्रवेश पाने में सफल रहा। उसने मंदिर के 50,000 पुजारियों तथा ब्राह्मणों के वध का आदेश दे दिया। भगवान सोमनाथ की मूर्ति टुकड़े टुकड़े कर दी गई तथा उसे गजनी, मक्का और मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों में चिनाई के निमित्त भेज दिया गया। महमूद को बहुत अधिक हीरे जवाहरात तथा स्वर्ण राशि लूट में प्राप्त हुई। यह धनराशि लगभग 20 लाख दिनार की थी, जिसे लेकर वह गजनी लौटा। मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर आक्रमण किया तथा कुछ संपत्ति लूट लिया, किंतु महमूद सकुशल गजनी पहुंच गया। जाटों से बदला लेने के लिए उसने 1027 ईस्वी में पुनः सिंध पर आक्रमण किया। वे पराजित हुए तथा उनके नगर जला दिए गए। बहुत को मौत के घाट उतार दिया गया। यह महमूद का अंतिम भारतीय आक्रमण था। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। निस्संदेह वह एक महान विजेता तथा उच्च कोटि का सेनानायक था, जिसने गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसका उद्देश्य भारत में तुर्की राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि वह तो मूर्तियों को नष्ट करने तथा संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया था। उसे अपने दोनों उद्देश्य में सफलता मिली। मोहम्मद हबीब का विचार है कि मोहम्मद धर्मांध नहीं था तथा भारत में उसके आक्रमण का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार न होकर अधिकाधिक धन प्राप्त करने की लालसा थी। उसने संपत्ति लूटने के लिए बड़े बड़े आक्रमण किए। हबीब के अनुसार इस्लामिक कानून में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को न्याय संगत मांगे अथवा उसे प्रोत्साहित करे। अतः महमूद ने भारत में बर्बरतापूर्वक कार्य करके इस्लाम का अपकार ही किया था। यह रहा हमारा महमूद गजनवी का आक्रमण और उसकी विजय। अब हम आगे देखेंगे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। यहाँ हमारा गजनवी समाप्त हुआ। अब हम गोरी के आक्रमण और उसका प्रभाव देखेंगे अगले चैप्टर में। मैं अभिज्ञात कुमार सिंह, बीए सेकंड ईयर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब हम आगे देखेंगे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे महमूद गोरी की, उसके आक्रमण की, उसकी विजयों की, उसकी पराजयों की और अंतोगत्वा उसकी साम्राज्य स्थापना की नीति की। जैसा कि हम देख चुके हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में, जिसने भारत में कई आक्रमण किए तथा लगभग सभी में सफलताएं अर्जित की, लेकिन उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि धन एकत्र करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य था, जिसमें वो सफल रहा। परंतु मोहम्मद गोरी को हम गजनवी से इसी बेसिक्स पे अगर अलग कर सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य मात्र धन अर्जित करना और इस्लाम धर्म का प्रोत्साहित करना ही नहीं था, बल्कि उसकी एक साम्राज्यवादी नीति भी थी। वो भारत में साम्राज्य स्थापित भी करना चाहता था और इसको लेकर के वो अत्यंत गंभीर भी था। गोर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। महमूद के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय में यहाँ के सरदारों ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। गोर के संसवंशी राजवंश के शासकों ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी नगर को ध्वस्त कर दिया गया और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसका नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी था, वहाँ का राजा बना तथा उसके बाद 3 वर्षों तक गोर साम्राज्य का उत्कर्ष होता रहा। मोहम्मद गोरी एक वीर एवं महत्वाकांक्षी था। गजनी का शासक होने के नाते वह अपने को पंजाब का वैध शासक समझता था, क्योंकि पहले वह गजनी साम्राज्य का अंग था। पंजाब का शासन गजनी वंश के खुराशाह मालिक के अधीन था तथा गोरी का गजनवियों से संघर्ष चल रहा था। इस कारण भी पंजाब पर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त वह मध्य एशिया में गोरियों की शक्ति को खारिज में शाह से भी चुनौती मिल रही थी, जिसने खुराशान पर अधिकार कर लिया था। अंत भारत की ओर आक्रमण करने के सिवा गोरी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने भारत पर आक्रमण कर एक साम्राज्य की भी स्थापना कर ली। 1175 तथा 1205 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। सबसे पहले उसने मुल्तान तथा सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक शिया थे, अतः मोहम्मद गोरी उनके राज्य को जीतना अपना धर्म समझता था। 1182 ईस्वी तक उसने मुल्तान, उच्च तथा दक्षिणी सिंध को जीत के अपने राज्य में मिला लिए, जो कि भारत की पश्चिमोत्तर सीमा थी। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में है, पर हुआ। राजपूताना के रेगिस्तान मार्ग से उसने गुजरात में घुसने का प्रयास किया। यहाँ का राजा बघेल भीम द्वितीय था। उसने गोरी को बुरी तरह परास्त किया तथा उसको देश से बाहर खदेड़ दिया। अब गोरी को यह विश्वास हो गया कि भारत को जीतने के लिए सिंध तथा मुल्तान पर नहीं अपितु पंजाब पर अधिकार करना आवश्यक। अतः उसने तदनुसार अपनी योजना क्रियान्वित करते हुए पंजाब पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम पेशावर तथा फिर लाहौर के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया। यहां के शासक गजनी वंशी खुराशाह मलिक ने उसकी आधीनता मान ली तथा बहुमूल्य उपहार दिए। 1185 ईस्वी में उसका सियालकोट के दुर्ग पर कब्जा हो गया। इस प्रकार मुल्तान, सिंध तथा लाहौर गोरी के साम्राज्य में शामिल हो गए और पंजाब से गजनवियों की शासन की समाप्ति हुई। यहां से गोरी के लिए भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात गोरी के साम्राज्य के सीमाएं दिल्ली तथा अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य सीमा का स्पर्श करने लगी। परिणाम स्वरूप दो महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। संघर्ष का प्रारंभ भटिंडा पर अधिकार को लेकर के हुआ। मोहम्मद गोरी ने अचानक भटिंडा के दुर्ग पर धावा बोल दिया तथा वहां अपना अधिकार कर लिया। उसने उसकी सुरक्षा का भार सेनापति मलिक जियाउद्दीन को सौंपा तथा उसकी सहायता के लिए 12,000 सैनिक रख दिए गए। मोहम्मद गोरी वापसी की तैयारी में ही था कि पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ उसका सामना करने के लिए बढ़ा। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन के इस मैदान में हुए दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध का महत्व इतिहास में बहुत ज्यादा है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई तथा घायल अवस्था में उसे एक विश्वास पात्र खलजी अधिकारी घोड़े पर बिठाकर भाग निकलने में सफल हुआ। पृथ्वीराज ने लौटकर भटिंडा के दुर्ग की घेराबंदी की तथा लगभग 13 महीने के पश्चात वह जियाउद्दीन से छीन सकने में सफल हुआ। यह गोरी की दूसरी पराजय थी। यहां एक प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए गोरी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पे बहुत विचार विमर्श हुए और इस पे बहुत अपवाद भी हुए और विद्वानों के अनेक मत भी इस पे सामने आए कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया। जो भी हो, परंतु अपनी असफलताओं से गोरी को निराश नहीं हुआ। अपनी असफलताओं से गोरी निराश नहीं हुआ। गजनी पहुंचकर उसने पूरी सैनिक तैयारी की तथा दूसरे वर्ष पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना के साथ भारत के लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी सेना में 120,000 चुने हुए अश्वरोही थे। लाहौर पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के पास किवाम उल मुल्क नामक अपना एक दूत भेजकर समर्पण करने तथा उसे अपना सम्राट मान लेने के लिए भेजा। किंतु पृथ्वीराज तत्काल युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसे कुछ अन्य राजपूत राजाओं का भी समर्थन मिला तथा उसकी सेना में 5,00,000 अश्वरोही तथा 3,000 हाथी थे। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस बार तुर्कों का पलड़ा भारी रहा तथा पृथ्वीराज की पराजय हुई। वह घोड़े पर चढ़कर भागा किंतु सिरसा के तट पर पकड़ा गया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज के मृत्यु के समय के विषय में मतभेद है। मिहराज उस सिराज के अनुसार उसकी तुरंत हत्या कर दी गई। इसके विपरीत हसन निजामी की मान्यता है कि उसे बंदी बनाकर अजमेर लाया गया जहां उसने गोरी की अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया। इसका प्रमाण पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों से मिलता है जिनके ऊपर संस्कृत में हमीर उत्कीर्ण है। बताया गया है कि बाद में गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए पकड़ लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। यही मत सही प्रतीत होता है। तराइन का दूसरा युद्ध इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक और इसके बहुत दूरगामी परिणाम भी हुए। इसके फलस्वरूप तुर्कों कि भारत भूमि में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो उठा। उसने न केवल चौहानों की साम्राज्यिक शक्ति को नष्ट कर दिया अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान पर भारी विपत्ति ढा दिया। शासकों तथा जनता का मनोबल पूरी तरह टूट गया तथा देश भयाक्रांत हो गया। चौहान शक्ति के टूट जाने के बाद उसने हांसी सिरसा कुंभराव समन आदि पर बड़ी आसानी से अपना अधिकार जमा लिया। मोहम्मद गोरी ने कूटनीति से काम लिया तथा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर के ऊपर अपनी अधीनता में राज करने का अधिकार दे दिया। दिल्ली का राज इसी प्रकार तोमर वंश को सौंप दिया गया। इंद्रप्रस्थ में उसने अपने विश्वासपात्र सहायक कुतुबद्दीन ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी जिसका काम हिंदू शासकों से संधि की शर्तों को मनवाना था। गोरी गजनी वापस लौट गया। उसके जाने के बाद अजमेर तथा दिल्ली में छिटपुट विद्रोह हुए किंतु ऐबक ने बखूबी उन्हें दबा दिया। 1194 ईस्वी में गोरी पुनः भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उद्देश्य गढ़वाल नरेश जयचंद को पराजित करना था जो कन्नौज तथा बनारस का शासक था। मुस्लिम लेखक उसे महानतम शासक बताते हैं। पृथ्वीराज के मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में जयचंद तटस्थ रहा था तथा उसने चौहान नरेश की कोई मदद नहीं की। इस उदासीनता का परिणाम उसे शीघ्र ही भुगतना पड़ा। चंदवार जो कि कन्नौज के पास है नामक स्थान पर जयचंद के साथ युद्ध हुआ जिसमें हिंदू शासक की पराजय हुई। बताया जाता है कि जयचंद अपनी सेना के साथ अत्यंत वीरतापूर्वक लड़ा तथा उसकी विजय लगभग निश्चित थी किंतु दुर्भाग्यवश उसकी आंख में घातक तीर लग गया तथा वह गिर पड़ा। हिंदू सेना में भगदड़ मच गई तथा तुर्कों की विजय हुई। विजेता गोरी ने बनारस पर अधिकार कर लिया जहां उसे एक भारी खजाना मिला। तत्पश्चात कुछ अन्य प्रमुख नगरों पर भी अधिकार हो गया। इस विजय के परिणाम स्वरूप तुर्क साम्राज्य बिहार की सीमा तक जा पहुंचा। 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पुनः आक्रमण किया तथा बयाना का घेरा डाला जहां जदोभट्टी राजपूत शासक कुमार पाल की राजधानी थी। वह पराजित हुआ तथा तुर्कों ने थंगिर तथा विजय मंदिरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। यहाँ की रक्षा का भार बहाउद्दीन तुगरील को सौंपा गया। उसी ने एक लंबे घेरे के बाद ग्वालियर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी के लौटने के बाद उसके सहायक कुतुबद्दीन ऐबक तथा एक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने बुंदेलखंड बिहार बंगाल आदि की विजय की। ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी को पराजित कर कलिंजर महुआ तथा खजुराहो के महत्वपूर्ण सामरिक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत की ओर अभियान करते हुए अनंतपुरी विक्रमशिला तथा नालंदा के विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया तथा मात्र 18 घुड़सवारों के साथ सौदागरों के छद्म वेश में सेनों की राजधानी नादिया पर धावा बोल दिया तथा आश्चर्य की बात यह है कि मात्र 18 घुड़सवारों के साथ वह राजा लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया और राजा लक्ष्मण से भाग खड़े हुए तथा आक्रांताओं ने वहां अधिकार करने के बाद भारी लूटपाट की। इस प्रकार तुर्क साम्राज्य का प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत में छा गया। 1206 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत से गजनवी वापस जाते हुए सिंध नदी के तट पर खोखर नामक लड़ाकू जाति द्वारा मार डाला गया। निसंदेह वह एक महान योद्धा तथा उच्च कोटि का सेनानायक था। उसने अपनी योग्यता के बल पर भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। उसके मृत्यु के बाद कुतुबद्दीन ऐबक नामक व्यक्ति ने उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी बना जिसने वहां गुलाम वंश की स्थापना की जिसने भारत को इल्तुतमिश और बलबन जैसे शासक भी दिए। इन सब के बावजूद अब एक प्रश्न उठ खड़ा होता है, राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस बात की राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे। राजपूत जाति के लोग अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा होते थे। अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए वे युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात समझते थे, परंतु इन गुणों के बावजूद वे मुसलमानों से देश की रक्षा कर सकने में असफल रहे और उन्होंने देश की स्वाधीनता को विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। राजपूतों का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं अपितु विभिन्न कारणों ने इस दिशा में अपना योगदान दिया। उनकी पराजय का सबसे पहला कारण यह था कि उस समय देश में राजनीतिक एकता की कमी थी। राजपूतों के छोटे छोटे कई राज्य थे, ये परस्पर संघर्ष किया करते थे। प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक अपने पड़ोसियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करने की चेष्टा किया करता था। प्रत्येक राजपूत कुल अपने वंश को ही महत्व देता था। शासन का स्वरूप सामंतवादी होने के कारण वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथ में होती थी, जो केंद्रीय शक्ति की निर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र होने की ताक में रहते थे। आम जनता राजनीतिक विषयों में उदासीन रहती थी, देश की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य नहीं समझती थी। ऐसी स्थिति में शासक का पतन अवश्यंभावी हो गया था। राजपूतों की पराजय के लिए उनकी सेना तथा सैनिक संगठन भी उत्तरदायी था। राजपूत सेना में पैदल सिपाही तथा हाथियों की संख्या अधिक थी और अच्छे घोड़ों की कमी थी। मुसलमान सैनिक लड़ाई की नई पद्धतियों से परिचित थे तथा उनके घोड़े और घुड़सवार दोनों ही राजपूतों से कहीं अधिक अच्छे होते थे। राजपूत सेना के हाथी कभी कभी बिगड़कर अपनी ही सेना में भगदड़ पैदा कर देते थे। राजपूत सिपाही तलवार, भाला, बरछी आदि द्वारा युद्ध करते थे, जबकि मुसलमान सैनिक तीर चलाने में पट्टू थे। तीर की खासियत, तलवार और भाला बरछी के सामने तीर ज्यादा श्रेयकर है, कारण कि इससे दुश्मन सैनिक को हताहत करने के लिए पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुसलमानों की सेना में राजपूत सेना से अच्छे सेनापति रहते थे। राजपूत लोग धर्म युद्ध करते थे, जिसके अनुसार युद्ध में भागते हुए शत्रु का पीछा न करना, शरण में आए हुए को अभय दान करना, घायल शत्रु पर वार न करना आदि उनका कर्तव्य था। इससे शत्रुओं को और आर्थिक क्षति तथा उत्साह के साथ दोबारा आक्रमण करने का मौका मिल जाता था। मुस्लिम सेना राजपूतों की सेना की अपेक्षा अधिक संगठित व अनुशासित थी। राजपूत सैनिक सामंतों द्वारा दिए गए होते थे, जिसमें से पेशेवर सिपाही की संख्या अधिक होती थी, अतः उसमें एक रूपता नहीं आ पाती थी। राजपूतों का सामाजिक संगठन दोषपूर्ण होने से भी उन्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। तत्कालीन समाज में जात पात, छुआछूत व ऊंच नीच की भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन पर देश की रक्षा का भार केवल क्षत्रिय जाति पे था, अतः सैनिक केवल इसी जाति से चुने जाते थे। समाज का बहुत बड़ा भाग देश की रक्षा की ओर उदासीन था। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो गया तथा मुसलमानों को संपूर्ण भारतीयों की जगह कुछ राजवंशों से युद्ध करना पड़ा। और इसके विपरीत मुसलमानों में जाति भाव और ऊंच नीच की कोई बात थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में भी उनकी सफलता निश्चित थी। इसके अतिरिक्त राजपूतों के अनेक दुर्गुण थे, जैसे मदिरापान, धूत क्रिया, बहुविवाह आदि, जिससे उनके जीवन का नैतिक स्तर गिर रहा था। अंत में उनमें मुसलमानों के समान न तो साहस ही था और न ही जोशी। तत्कालीन हिंदू धर्म भी राजपूतों के सैनिक दृष्टि से निर्बल बना रहा था। जहां उन पर एक ओर बौद्ध और जैन धर्मों का अहिंसा सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, वहीं कर्मवाद, भाग्यवाद, अनेक अंधविश्वास आदि ने मिलकर हिंदुओं की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया। वे अत्यंत भाग्यवादी हो चुके थे, जिससे आत्मविश्वास की भावना लगभग समाप्त हो गई थी। आम जनता मुस्लिम शासन में त्रस्त होते हुए भी उसे अपना संपूर्ण संचित कर्मों का फल मानकर कष्ट भोगने के लिए तत्पर हो गई थी और उससे उनका विरोध करना अपना कर्तव्य नहीं समझा। इसके विपरीत चूंकि मुसलमान पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते थे, अतः वे उत्साहपूर्वक युद्ध करते थे। उन्होंने जिहाद का नारा दिया। इस प्रकार उनकी सेना में जीवन शक्ति अधिक थी। राजपूतों के विरुद्ध मुसलमानों की सफलता का एक प्रबल कारण यह था कि तुर्क विजेता अपने राजपूत प्रतिद्वंदियों की तुलना में अधिक योग्य एवं अनुभवी थे। सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि अपने समकालीन राजपूत शासकों जयपाल, भीम, भोज, पृथ्वीराज, जयचंद आदि की अपेक्षा उच्च कोटि के सेनानायक थे। उसमें सैनिक संगठन तथा संचालन की योग्यता राजपूत राजाओं की अपेक्षा कहीं अधिक थी। राजपूत शासकों से युद्ध क्षेत्र में भयंकर भूले हो जाती थी। जिस समय जयपाल ने सुबुक्तगीन के राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय राजपूत सेना की विजय निश्चित थी, परंतु इसी बीच राजपूत सेना पर भारी बर्फ व ओले पड़े, जिससे अनेक सैनिक मौत के शिकार हुए और जो बचे उनका उत्साह भंग हो गया। फलस्वरूप उसे अत्यंत अपमानपूर्ण शर्तों पर संधि करनी पड़ी। इसी प्रकार जिस समय पंजाब के हिंदू शासक आनंदपाल का महमूद गजनवी से युद्ध चल रहा था, उस समय राजपूतों की सफलता लगभग निश्चित थी। दुर्भाग्यवश उसका हाथी बारूद की आग से भड़क कर भाग गया। फलस्वरूप उसकी सेना में खलबली मच गई और वह पीछे लौट पड़ी। महमूद ने 2 दिनों तक उनका पीछा किया और बिना प्रयास के ही उसकी विजय हो गई। इस प्रकार जयचंद की आंख में अचानक तीर लग जाने से उसकी सेना पराजित हुई। कुछ अन्य स्थान भी ऐसे ही हैं जहां आकस्मिक कारणों से राजपूतों को मुंह की खानी पड़ी। इस प्रकार की घटनाएं यदि मुसलमानों के साथ हुई होती तो इतिहास का स्वरूप कुछ दूसरा होता। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की पराजय अनेक कारणों से संभव हुई। राजपूतों ने कभी भी आक्रमणात्मक युद्ध नहीं किया। बार बार तुर्कों का आक्रमण होने पर भी उन्होंने समस्त भारतीय राजाओं को संगठित कर उनके विरुद्ध स्थायी तौर से संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास नहीं किया। आक्रमणकारियों के वापस चले जाने पर वे देश की सुरक्षा की ओर से निश्चिंत हो जाते थे और व्यक्तिगत झगड़ों में पुनः उलझ पड़ते थे। उनमें दूरदर्शिता एवं कूटनीतिज्ञता का घोर अभाव था, अतः उनका पतन असंभावी था।